بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا آگے اپنے رولز کی مزید پروگرس کرتے ہیں. آپ لوگ مد کے چیپٹر کو پڑھ رہے ہیں، مختلف مد آپ نے دیکھے، اور امید ہے کہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے پھر ان کی صحیح ریسائٹیشن، یعنی کہ ان کی صحیح لیندنگ، ان کو صحیح طرح سے لمبا کر کے ادا کرنے کی بھی پریکٹس کی ہوگی الحمدللہ. تو آج ہم تھوڑی سی اس کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں اور ایک جسٹ سم اپ بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے مد اصلی پڑھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے مد فرعی ایسے مد کے جن کی برانچز ہیں مزید، یعنی ان کی اور مزید ٹائپس بن جاتی ہیں اور وہ مد اصلی سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں، مد اصلی سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسک حرف مد کو یوز کر کے اس کے آگے پیچھے کے ورڈز کو یا لیٹرز کو دیکھ کر پھر ہم ان کی مختلف اقسام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہم نے مختلف ٹائپس دیکھی تھی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا مد متصل، ٹھیک ہے. متصل ایسی مد کہ جس میں حرف مد اور حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر آ جائے، تو پھر ایسی مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس کی مقدار کم از کم چار الف ہوگی، ٹھیک ہے. مقدار جتنے بھی مد کی جسے آپ کو بتائی جا رہی ہے، تو یاد رہے کہ یہ کوئی ایک، یعنی کہ اس کو ایک بہت ہی فاسٹ رول مت بنا لیں کہ بس اتنا ہی ہے تو اتنا ہی ہے. تو لیکن یہ یاد رکھیں کہ کم از کم جو ہے، جو کم از کم، کم سے کم مقدار ہے، وہ سب جگہ آپ کو ایک ہی ملے گی. تو مد متصل ہے تو اس کو کم از کم چار الف کھینچنا ہے، یہ منیمم والی جو چیز ہے اس کو ہم اپنے میک شور کریں گے اپنی ریسائٹیشن میں، ٹھیک ہے. تو مد متصل کم از کم چار الف ہم ضرور کھینچیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مد متصل کبھی بھی اومٹ نہیں کی جا سکتی، یہ ہر حال میں موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جیسے مثال ہم قرآن میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں، شاء شاء، ٹھیک ہے. اب جب یہاں ہم کنٹینیو بھی کریں، یعنی حمزہ کے اوپر حرکت دے کے آ کے ورڈز پر چلیں، تب بھی ہم اس کو کھینچیں گے، اور اگر ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں تو بھی ہم اس کو کھینچیں گے، شا، ٹھیک. آگے ملائیں گے، شا، ٹھیک ہے. اس تب بھی ہم اس طرح سے کھینچتے ہیں. مد منفصل پڑھی ہم نے اگلی مد، اور مد منفصل ایسی مد کہ جس میں حرف مد اور حمزہ الگ الگ ورڈز میں قریب قریب آ رہے ہوں، یعنی کہ جیسے ایک حرف مد کسی پہلے ورڈ کے آخر میں تو نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی دونوں بہت قریب قریب ہیں مگر الگ الگ ورڈز کے اندر موجود ہیں. تو ایسی مد کو مد منفصل جائز کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار کم از کم دو الف ہونی چاہیے، اور دو سے چھ الف، سوری دو سے چار الف تک کی اس کی مقدار ہے، ٹھیک ہے. ناؤ اس کی مثال تو ہمیں بہت ملتی ہے قرآن میں، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ قالو ایوہا، قالو انہا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ قالو میں آخر میں واو مد ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں وہ والا جو سرکمسٹانس میٹ کر رہا ہے، لہٰذا یہ حرف، یہ مد منفصل کہلائی جائے گی. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن میں ھذا الا، ھذا الا، ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں. پھر نیکسٹ مد ہم نے دیکھی مد لازم، اور مد لازم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرف مد کے فوراً بعد اصلی سکون آ جائے، یعنی کہ ایسی سکون جس کو ہم کبھی بھی اومٹ نہیں کر سکتے، چاہے ہم وہاں وقف کریں، چاہے ہم وہاں پر اس ورڈ کو ملا کر پڑھیں، وہ ہر حال میں سکون ہی رہے گا، ٹھیک ہے. یعنی وہ حرکت میں چینج نہیں ہو سکتا. ایسی مد کو مد لازم کہتے ہیں. جیسے قرآن میں بہت سارے ورڈ آتے ہیں، جیسے ایک بہت کامن ورڈ جس کی اگزامپل میں آتا ہے، آل آنا، آل آنا، ٹھیک ہے. تو آل آنا میں کیا ہوتا ہے کہ حمزہ زبر الف آ، یہاں یہ جو حمزہ زبر کے بعد الف مد آئی ہے، اور پھر لام ساکن، ٹھیک ہے. اس لام کی سکون کو ہم نہیں ہٹا سکتے کبھی بھی، لہٰذا ہم کیسے اس کو پڑھتے ہیں، آل آنا، اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. امید کہ یہ بات بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہے. اس کی مقدار کم از کم ہمیں چار الف رکھنی ہے. चार से लेके छः अलिफ मद लाजम की मकदार हो सकती है, और मद लाजम तमाम मदात में सबसे ज़्यादा मजबूत मत है, यानी इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। ये चाहे कितनी कोई हम फास्ट रिसाइटेशन करें, कितनी ही हम स्लो रिसाइटेशन करें, ये मद की मकदार इतनी ही रहेगी और इतना इसको हमें ज़रूर खींचना है। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था मद आरस, आर्जी मत, यानी आर्जी तौर पर। अब उर्दू में हम दौत को जो है वो ज़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन अरबी में अगर हम देखेंगे तो मद आरव, ठीक है। तो मद आरव जो है वो कौन सा मद है कि जब कभी हरफ मद के फ़ौरन बाद आर्जी सकून आ जाए, जो कि हम अक्सर वक्फ़ करने की सूरत में लगाते हैं या आयत मुकम्मल हो जाती है इसलिए वहाँ लगा दिया जाता है आर्जी तौर पर कि हम वक्फ़ कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, रिसाइटेशन को स्टॉप किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर सुकून लगा रहे हैं। लेकिन जब हम उसी वर्ड को आगे अगले वर्ड से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये सुकून हट जाती है, फिर ये हरकत में चेंज हो जाती है। जैसे अक्सर आयात के आखिर में वर्ड जारी होते हैं जो कि वाव नून या नून से एंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे सूरतुल अंबिया को अगर आप खोलें और इसमें पहली आयत में मुअरिदून दून, तो यहाँ क्या हो रहा है, वाव मद के फ़ौरन बाद नून ज़बर ना भी है, और ये नून की जो ज़बर है इसको हम साकिन कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ इस आयत पर स्टॉप कर रहे हैं, मुअरिदून, ठीक। इस मद को हम कहते हैं मद आरस, और मद आरस की जो मकदार है वो आप यूँ समझ लें वो दो से लेके छः हरकात के मुताबिक हम इसको लंबा कर सकते हैं, ठीक है। दो से लेके छः हरकात के मुताबिक हम इसको लंबा कर सकते हैं, यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पढ़ूँ मुअरिदून, बस इतना ही, एक हरफ मद की तरह मैंने इसको नॉर्मली पढ़ दिया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लंबा भी कर सकती हूँ मुअरिदून, ठीक है। जबकि आप देखें कि यहाँ कोई मद का साइन नहीं लगा हुआ होता जब हम रिसाइटेशन करते हैं, लेकिन अब जब हमने ये पढ़ा है तो हमें पता चला है कि इस तरह से जो प्रोलॉन्गेशन अगर कोई कर रहा है अपनी रिसाइटेशन में तो वो गलत नहीं कर रहा, बल्कि ये जायज़ है, ये किया जा सकता है, हमारे पास चॉइस है, ठीक है। तो उम्मीद की बात क्लियर है और आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, यानी कि अपनी टीचर के साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल्स भी मज़ीद देखी होंगी। अब इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा हमने ये भी देखा था कि हरफ लीन आ जाए अगर हरफ मत की जगह, ठीक है। अगर अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बिकॉज ऐसी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। अब अगर हम जैसे आया नंबर 9 देखें सूरतुल अंबिया के अंदर, वह अहलक नल मुसरीफीन रिफीन, यहाँ पर फा ज़ेरिया फ़ीन, यहाँ याए मद है। अगर मैं इसमें चेंजिंग करूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर हरफ लीन किस तरह से हो, जैसे अगर हम फा की जो ज़ेर है उसको ज़बर कर दें, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम सबको पता है कि या मद या वाव मद से पहले अगर ज़बर आ रही है, सॉरी या मद और वाव मद नहीं कहेंगे इसको, हर्फ या हर्फ वाव से पहले अगर ज़बर आ रही है तो उस या और वाव को हम हरफ लीन कहते हैं, ठीक है। अगर हम अब जैसे फा के ऊपर ज़बर लगा दें तो या से पहले क्या हो जाएगा कि फ़ा के ऊपर ज़बर आ गई है, ठीक है, तो बन जाएगा क्या, अल मुसरी फ़ीना, ठीक है। अब जैसे भी अभी इसकी फॉर्मेशन है आप आगे पीछे के लेटर्स को मत देखें, अल मुसरी फ़ीन, ठीक है, फ़ीन। अब यहाँ अगर हम रुकेंगे तो हम कैसे रुकेंगे, अल मुसरी फ़ीन फ़ीन, इसको भी हमने लंबा कर दिया है बिकॉज़ ये भी मद के रूल के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो वही बात कि हरफ लीन आ जाएगा तो फिर ये मद आरज़ लीन बन जाएगा, अगर मद लाजिम में भी यही चीज़ होगी तो फिर वो मद लाजिम लीन बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी मज़ीद में एग्ज़ाम्पल्स हम इंशाल्लाह आगे दूसरे टाइप्स में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा मद लाजिम, तो इंशाल्लाह आज आगे थोड़ा सा चलते हैं जी आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा डिफरेंट और मज़ीद जिनकी टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं मद लाजिम की, ठीक है। और इससे मैं मज़ीद और यानी कि जब हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ते हैं जिससे हमें हर हर लेटर और हर्फ का पता चलता है कि आखिर ये ऐसा क्यों अदा हो रहा है, तो बड़ी खुशी होती है कि कम अज़ कम आई नो व्हाट आई एम रिसाइटिंग। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं आज मद लाजिम की मज़ीद टाइप्स, और इसको पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स को देख लें कि मुसक्कल और मुखफ़, ठीक है। मुसक्कल, सा, कौफ और लाम, ठीक है, ये इसका रूट वर्ड बनता है। सकल सकील हमने पढ़ा है कुरान के अंदर, ठीक है। तो सकल बोझ को कहते हैं ना, तो मुसक्कल यानी कि भारी, ठीक है। तो एक तो ये वर्ड समझ लें, मुसक्कल भारी, और मुखफ्फफ खौफाफा मुखफ्फफ, तो मुखफ्फफ कहते हैं हल्की चीज़ को, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, तो मुसक्कल भारी और मुखफ्फफ हल्की, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम देखते हैं कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ्फफ, और इसी तरह से हरफी मुसक्कल और हरफी मुखफ्फफ। क्या समझ में आए कि ये मुसक्कल और मुखफ्फफ आप कलमे के साथ लगाएं, यानी कि एक तरफ आप दो टाइप सी कलम कलमे के नाम के साथ लगा दें, कलमी मुसक्कल और कलमी मुखफ्फफ, एंड ऑन द अदर हैंड आप हर्फ के साथ लगा दें, हरफी मुसक्कल और हरफी मुखफ्फफ, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो फोर टाइप्स क्या बनेंगी? फर्स्ट वन कलमी मुसक्कल, सेकेंड वन कलमी मुखफ्फफ, थर्ड वन हरफी मुसक्कल, एंड फोर्थ वन हरफी मुखफ्फफ, ठीक है। आई प्रेफर कि आप ये सब नाम जो हैं वो अरबी ज़बान में ही याद रखें, यानी जो इनकी एग्जैक्टली तजवीद में टर्म्स बयान किए जा रहे हैं वही चीज़ हमें भी याद हो। थोड़े से मुश्किल लगते हैं शुरू में याद करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर इनको उर्दू के साथ कहीं रिलेट कर लेंगे तो फिर ये आसान हो जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जी अच्छा, कलमी मुसक्कल, मुसक्कल क्यों कहा जा रहा है? इसकी ये है वजह के शद का आना, ठीक है। शद की वजह से आप मुसक्कल कह रहे हैं और सुकून की वजह से आप मुखफ्फफ कह रहे हैं। हम सबको पता है कि मद लाजिम किस चीज़ से होता है, कि सुकून आ जाए बस हरफ मद के बाद, तो उससे फिर मद लाजिम बन जाता है। जैसे कि हमने पहले भी इसकी मद लाजिम की पहले जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि मद लाजिम में शद भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि हरफ मद के बाद हम सुकून असली की मौजूदगी देखते हैं, ऐसे अगर शद भी आ जाए तो भी हम मद लाजिम ही कहते हैं, वही रूल अप्लाई करेंगे जो सुकून की मौजूदगी में कर रहे हैं। तो अगर तो हरफ मद के फ़ौरन बाद शद आ रही है, शद यानी वो जो छोटा सा डब्ल्यू लिखा हुआ होता है, तो देन उस मद लाजिम को हम कहेंगे मद लाजिम मुसक्कल बन जाएगी। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये शद वर्ड में आ रही है या किसी लेटर में आ रही है। जैसे कुरान में तो हम वर्ड्स ही देख रहे हैं ना, यानी जो नॉर्मल आयात में हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि दाबा दाबा, इसी तरह से हम पढ़ते हैं अल्लाहु, तो इसको मैं प्रॉपर प्रोलोंगेशन के साथ नहीं अभी रिसाइट करी, लेकिन जब हम रिसाइटेशन करेंगे तो उसमें हम प्रॉपर प्रोलोंगेशन रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ के जैसे दाबा, तो दाबा में क्या हो रहा है? दाबा जैसे आपने कुरान में पढ़ा है कि दाल जबर अलिफ दा और फिर बा के ऊपर शद मौजूद है, दाबा, हम इसके ऊपर स्ट्रेस देकर आगे चलते हैं ना बा पे शद की वजह से। और शद आपको पता है क्या शो करती है? शद क्या शो करती है कि यहाँ दो लेटर्स मौजूद हैं इस छोटी सी शद के अंदर। इस शद ने उन दो वर्ड्स को एक करके शॉर्ट कर दिया लिखने में, ठीक है। तो वरना क्या है कि दो बा मौजूद हैं, एक साकिन और दूसरा हरकत के साथ, यानी दाबा पहले हम स्टॉप करते हैं, यानी कि उसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं, सकून वाला अदा करते हैं, और जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो बा बा जबर बा उसको अदा कर देते हैं, ठीक है। तो दाबा ये वाला जो मद बनेगा, ये चौंके एक वर्ड में हम मद लाजिम देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात क्लियर है आप सबके लिए। तो उसकी वजह से ये कलमी मुसक्कल, कलमा वर्ड को कहते हैं, कलमी मुसक्कल शद की वजह से मुसक्कल लगा दिया, ठीक है। इसकी जितने भी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आप बस नाम याद रखें इसका। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कलमी मुखफ्फफ, मुखफ्फफ वही सारी टाइप्स जो पीछे आपने मद लाजिम की एग्जांपल्स में देखी, आल आना, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स इसी में आती हैं, ठीक है। और जैसे हम मज़ीद भी इंशाल्लाह जब कुरान में आप रिसाइटेशन करेंगे ना अपने, तो आप उसमें देखेंगे तो आपको पता मिलेंगी बहुत फ्यू एग्जांपल्स हैं मद लाजिम की, बट स्टिल यू विल फाइंड देम इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो सुकून आएगा किसी भी वर्ड के अंदर और मद लाजिम यानी हरफ मद के फ़ौरन बाद असली सुकून मौजूद होगा, उसको हम कलमी मुखफ्फफ कह देंगे, ठीक है। ये मद लाजिम की टाइप्स हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं हरफी मुसक्कल और हरफी मुखफ्फफ। ये हरफी क्या मतलब? तो हरफी से मतलब ये है कि जो हरूफ मुक़त्तआत के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जो मद हरूफ मुक़त्तआत के अंदर आ रहे हैं। अब आप देखें कि कुछ कुछ लेटर्स जो हम अरबी ज़बान में देखते हैं, जैसे हम देखते हैं सौद, ठीक है, सौद, ठीक है, इसमें कैसे लिखा जाता है? अगर हम मैं कहूँ कि सौद को हम वर्ड्स में लिखें, मुझे प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो, तो हम लिखते हैं सौद अलिफ और आखिर में दाल, ठीक है, ये इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन बन जाती है सौद, ठीक है, लास्ट में दाल पर कलकला है, ठीक है, यानी दाल पर सकून है। और जब हम सौद को अदा करते हैं तो हम कैसे अदा करते हैं? जब भी ये हरूफ़े मुक़त्तआत में आता है सौद, ठीक है, सौद लंबा करते हैं। आप देखिए इसी तरह से हमने जैसे सूरह मरियम के अंदर भी पढ़ा था, तो हम पढ़े थे काफ काफ, बहुत लंबा करके अदा कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मद लाजिम मौजूद है। काफ को लिखेंगे तो काफ, जबर, अलिफ और फिर फा साकिन। कभी हम काफ को काफा पढ़ते हैं? काफा, काफी, काफू? नेवर, बिकॉज काफ की प्रोनाउंसिएशन यही है कि आखिर फा के ऊपर सकून रहेगा, ठीक है, तो ये सकून असली है, इससे पहले अलिफ मद मौजूद है काफ का, तो इसलिए हम इन लेटर्स को लंबा करते हैं काफ, ठीक है, इस तरह अदा करते हैं। इसी तरह से हम आगे देखें तो काफ हा या आइन, आइन, ठीक है, यहाँ पर हम वही चीज़ याद रख लें जैसे लीन का बताया था आपको, तो ये आइन के अंदर या लीन है, या मद नहीं है, क्योंकि या से पहले आइन पर ज़बर है, तो आइन, हम इस तरह से इसको अदा करते हैं। इसको प्रोलोंगेशन जब हम रिसाइटेशन करेंगे तो प्रॉपर करेंगे, ठीक है, आइन, ठीक है। और फिर उसके बाद सौद, वही इसके आखिर में आ जाते हैं आइन सौद, इस तरह से हम इसकी रिसाइटेशन करते हैं। तो ये एक्चुअली आपको हर्फ बताना था कि ये हर्फी मद लाजिम है, और इसमें भी हर्फी मुसक्कल और मुखफ्फफ जो हैं वो शद की मौजूदगी से और सुकून की मौजूदगी के मुताबिक बनेगा, ठीक है। अब जैसे आप देखें कि हम देखें कि लाम सॉरी हम देखते हैं जैसे एक बहुत कॉमन हरूफ मुक़त्तआत है अलिफ लाम मीम, ठीक है, अलिफ लाम मीम, ठीक। अब ये जो लाम की जो मीम है, लाम की मीम, लाम अलिफ मीम लाम, इसकी मीम नेक्स्ट जो वर्ड जो लेटर है मीम, उसकी मीम से मिलता है ना, यहाँ आप देखते हैं कि छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लेटर्स मिलते हैं आपस में, ला मीम, इस तरह से हम इसको अदा करते हैं। तो ये जो शद की वजह से यानी शद से पहले वाली जो या मद होगी, ये जो लाम की या मद आ रही है, सॉरी अलिफ मद आ रही है, तो ये मद मद लाजिम ही है और शद की वजह से मुसक्कल है, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह हम टाइप्स देखेंगे ना जब आप, आई विल ट्राई इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में, तो फिर हम इन वर्ड्स की सॉरी इन लेटर्स की हम फिर मज़ीद सारे लेटर्स को देखेंगे कि कहाँ पर कैसे और हरूफ मुक़त्तआत में जैसे जैसे आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उससे और क्लियर हो जाएगा। आप अपने ऑन पर भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर वाहसनुल जज़ा सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।